कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सत्य वचन में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आनंदित हैं और कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, हम इस अध्ययन में पुराने नियम की पुस्तक के पहले राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एलिय्याह ने बाल के पुजारियों को चुनौती दी और उनके बाल देवता तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने आग बरसाकर होम बलि लकड़ियों समेत भस्म की। यह प्रजा के मन फिराव के लिए गवाही ठहरी कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। मित्रों, हमने देखा कि एलिय्याह ने सब बाल पुजारियों को पकड़वा कर किशोन के नाले में मरवा डाला। इसके बाद उसने प्रार्थना की और घनघोर वर्षा हुई। यहां तक हमने पिछले अध्याय में देखा था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 19 से देखेंगे, जिसमें हम झाऊ के पेड़ के तले एलिय्याह को पाते हैं। आहाब ने इजेबेल को सूचना दी कि एलिय्याह ने उसके सब बाल पुजारियों को मरवा दिया है। यह सुनकर उसने एलिय्याह को घात करने का प्रण किया। एलिय्याह वहां से बीर्शिबा भागा और अपने सेवक को वहां छोड़ जंगल की ओर चला गया, जहां वह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी मृत्यु की याचना करने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिय्याह मानसिक व्यथा से ग्रस्त हो गया था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। परमेश्वर उसे पोषक भोजन देता है और गहरी नींद में सुला देता है। उसके बाद वह उसे दर्शनीय प्रदर्शन दिखाता है, आंधी, भूकंप और आग। एलिय्याह को वह देखकर प्रसन्नता हुई और अब एक छोटी सी वाणी उसे सुनाई दी। यद्यपि यह एलिय्याह के व्यक्तित्व के विपरीत था, परमेश्वर उस छोटी वाणी द्वारा प्रकट हुआ। परमेश्वर उसे कार्य क्षेत्र और संकट में फिर से भेजता है। मार्ग में एलिय्याह ने एलिशा को बुलाया। मित्रों, हम देखते हैं एलिय्याह इजबेल से डर कर भागा और विश्वास नहीं होता कि यह वही एलिय्याह है जिसने कर्मेल पर्वत पर 450 बाल देवता के पुजारियों को चुनौती दी थी। यहां तो वह एक अलग ही मनुष्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या था? आइए हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं। अब आहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मेरे मित्रों, इजेबेल ने एलिय्याह को यह धमकी भरा संदेश भेजा था और संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष खड़े होकर अपने देश की झूठी उपासना को चुनौती देने में उसकी बहुत ऊर्जा और शक्ति गई होगी। इजेबेल का धमकी भरा संदेश सुनकर उसने बड़ा विचित्र काम किया। जैसे पतरस ने प्रभु यीशु की ओर से दृष्टि हटाकर जब पानी की लहरों को देखा तब डूबने लगा, उसी प्रकार एलिय्याह की भी एक बार साहस टूट गई। वह भागा और दक्षिण के बीर्शिबा पहुंचा। मेरे मित्रों, मेरी बात को आप माने, मैं वहां नहीं गया हूं। वह यह स्थान है जहां पर रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में यदि कोई पहुंच जाए तो वह उत्तरी राज्य के शासक से सुरक्षित हो गया समझे। परंतु एलिय्याह जब उस मरुभूमि में पहुंचा तो उसने अपने सेवक को वहां छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, उसके एक दिन और यात्रा की। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे प्रिय मित्रों, यहां आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्मेल पर्वत पर खड़े होकर बाल के पुजारियों को चुनौती देने वाले इस पुरुष में परिवर्तन आ गया है। वह देश के दूसरे कोने में झाऊ के पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। एक स्त्री इजेबेल के डर से, आहाब ने तो उसे पकड़ने का और नष्ट करने का प्रयास नहीं किया, परंतु इजेबेल एलिय्याह से घृणा करती थी और यदि हो सके तो उसका जीना दुभर करेगी। मेरे विचार में हमें ध्यान देना होगा कि जब एलिय्याह ने वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना की और आग बरसी, तब उसे मानसिक आघात का अनुभव हुआ होगा। इसके पश्चात बाल पुजारियों की हत्या, फिर घनघोर वर्षा हुई। यह वास्तव में एलिय्याह की महान विजय थी। आहाब जब घर पहुंचा और इजेबेल को संपूर्ण घटना सुनाई तो उसने एलिय्याह को संदेश भेजा, मैं कह देती हूँ कि तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। इजेबेल बाइबल में व्यक्त स्त्रियों में सबसे अधिक दुष्ट नारी थी। एलिय्याह ने परमेश्वर पर से दृष्टि हटाई और भयातुर हो मानव वस्ती के अंतिम छोर से परे भाग गया। मेरे प्रियो, वह बेर्शेबा से भी दूर निकल गया और आश्वासन पाया कि वह इजेबेल की पहुंच से बाहर है। सच कहूं, मैं तो उसे झाऊ के पेड़ के नीचे रेंगता हुआ देख लज्जित होता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई अति धर्मी विश्वासी एलिय्याह को प्रसन्न रहने और सकारात्मक विचार रखने तथा ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराते रहने का एक छोटा सा संदेश दे सकता है। वह उसे सुझाएगा कि रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद को पढ़े। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में एलिय्याह के लिए मुस्कुराना असंभव था, विशेष करके जब वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा था। मित्रों, मैंने एक अंग्रेज भक्त का प्रवचन सुना जिसका शीर्षक था संक्षिप्त उज्जवल एवं भाईचारे का। झाऊ के पेड़ के नीचे एलिय्याह को ऐसा बोध नहीं हुआ था। आप एलिय्याह की आलोचना कर सकते हैं, आप उसमें दोष देख सकते हैं, आप उसकी निंदा भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था। कुछ तो यह भी कहने से नहीं चुकेंगे कि वह परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण था। मेरे मित्रों, हमारे इस भविष्यद्वक्ता को वास्तव में हो क्या गया था? क्या यह वही पुरुष था जिसने बाल पुजारियों को चुनौती दी थी? क्या यह वही पुरुष है जिसने कहा था यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो? उसके साथ अब क्या समस्या, उसका निदान क्या है? क्या आप हमें इस कारण को समझा सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको इसके संबंध में अनेक सुझाव देना चाहता हूँ। उसके इस व्यवहार के भौतिक कारण थे। उसने आवश्यकता से अधिक श्रम किया था, वह अत्यधिक श्रांत था, वह चिंताओं से दबा हुआ था, वह शारीरिक रूप से टूट चुका था। मेरे विचार में वह कर्मेल पर्वत की घटना के बाद पथ में गिर जाता, अत्यधिक विरोध में परमेश्वर के लिए खड़े होने के कारण, कठिन काम के कारण वह क्लांत हो चुका था। मेरे मित्रों, सेवा में पाप का कारण पैसा नहीं है जैसा अनेक लोग सोचते हैं। दुर्भाग्य से ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो धार्मिक ठग व्यापार चला रहे हैं, जबकि एक सामान्य प्रचारक के लिए पैसा समस्या का कारण नहीं है। जब मैं सेवा में आया तो मुझे सेवा में आने वाले 3 पापों की चेतावनी दी गई थी। पहला है घमंड, अरुचि और आलस्य। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोग झाऊ के पेड़ के तले कभी नहीं आएंगे। मित्रों, आप जानते हैं क्यों? वे आलसी हैं। यद्यपि इसराइल में 7,000 मनुष्य थे जिन्होंने बाल को दंडवत नहीं किया था, वे झाऊ के पेड़ के तले नहीं बैठे थे, वे पहाड़ी गुफाओं में छिप रहे थे, वे कर्मेल पर्वत की ऊंचाइयों का सामना नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने स्वर्ग से गिरने वाली आग भी नहीं देखी थी। एलिय्याह अकेला ही था, वह अपनी शारीरिक शक्ति को उड़ा रहा था। मेरे विचार में किसी प्रिय संत ने उसके कानों में कहा होगा, तुम बहुत अधिक बोझ उठा रहे हो, थोड़ा विश्राम करो। एलिय्याह इज़बाल से कभी नहीं भागता यदि वह थक नहीं जाता। मेरा विचार में हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के लिए खड़े हों। मैं मनुष्यों के समर्पण के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ, परंतु वे प्रभु की सेवा में यथासंभव आलसी और लापरवाह होते हैं। मेरे मित्रों, एलिय्याह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वह झाऊ के पेड़ के तले बैठा था क्योंकि वह थक चुका था। उसका यह समय तनाव का, निराशा का, अशक्ति का, निष्क्रियता का, उदासी का, परित्याग का, असहयोग का, मानसिक दुर्बलता का, निरुत्साह का और अक्षमता का समय था। अति संभव है कि आपने एलिय्याह को गलत समझा होगा। वह कठोर एवं कष्ट उठाने वाला मनुष्य था, वह वज्र पुरुष था, परंतु इस कठोर व्यक्तित्व में एक संवेदनशील आत्मा थी। वह भावनाओं के वशीभूत था, वह ऊंचा उठ सकता था तो विषाद में भी गिर सकता था। उसमें परिष्कृत संवेदना थी, उसमें कला एवं सौंदर्य का भाव था, उसका स्वभाव भावनापूर्ण था। मेरे मित्रों, वह भावनापूर्ण कार्य करता था। संभवतः उसकी समस्या उन्मादी निराशा का चित्त विच्छेद थी। एक स्त्री संभवतः परमेश्वर की अत्यधिक कोमल रचना है और वह भावना प्रवण होती है, उसमें पुरुष की तुलना में अधिक परिष्कृत संवेदना होती है। एलिय्याह में ऐसा ही स्वभाव था, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की संपूर्ण साज सज्जा एवं ऐश्वर्य के बाहर चमड़े का आवरण रखा था। इसी प्रकार एलिया का बाहरी रूप था, वह परमेश्वर को पुकार रहा है कि वह उसकी जान ले ले। उसकी दशा बहुत बुरी थी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5-7 पद में पढ़ते हैं, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। मेरे प्रियो, एलिया को विश्राम की आवश्यकता थी। परमेश्वर जानता था, अतः उसने उसे सुला दिया था। एलिया एक शिशु की नाई सो रहा था, उसे पोषक भोजन की भी आवश्यकता थी और मेरे विचार में वह नियमित भोजन भी नहीं कर रहा था। वह सोकर उठा तो उसने वहां पकी हुई रोटी और वहां पर एक सुराही पानी देखा। आपके विचार में रोटियां बनाने वाला कौन था? मेरे विचार में वह वही पुरुष था जिसने गलील सागर के तट पर एक दिन सुबह नाश्ता तैयार करके रखा था। यीशु के पुनरुत्थान के बाद हमारे प्रभु ने भी एलिया को ढाड़स बंधाया, उसे भोजन दिया और फिर सुला दिया। उसने उसे दूसरी बार भी भोजन करवाया और कहा तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यह एक शिक्षा एलिया ने वहां पाई। मेरे मित्रों, आज का दिन संभवतः आपके लिए एक अच्छा दिन हो। आपको संभवतः ऐसा प्रतीत हो कि आप जीवन के संघर्ष में सिद्ध हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी है। आपको एक उद्धारक की आवश्यकता है, आपको एक सहायक की आवश्यकता है। एलिया चाहे कैसा भी कठोर मनुष्य था, उसे परमेश्वर की आवश्यकता पड़ी। हम आगे देखते हैं होरेब पर्वत पर एलिया। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। मेरे मित्रों, प्रभु से प्राप्त भोजन खाकर एलिया को बल प्राप्त हुआ और वह आगे चल पड़ा। वह होरेब पार गया जहां मूसा को व्यवस्था दी गई थी। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9-10 पद में, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परमेश्वर एलिया की देखभाल कर रहा है। वह बहुत थका हुआ है और उसे मानसिक सहायता की भी आवश्यकता है। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं मानसिक चिकित्सक के पास जाने के पक्ष में हूँ। मेरे विचार में कभी ऐसा समय आता है जब हमें मानसिक चिकित्सकों के पास जाने की भी आवश्यकता होती है, परंतु हम इसे अधिकांश अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु के तख्त के निकट आ जाएं और उसे सब कुछ कह दें, तो हमें जगह जगह जाकर सबसे अपनी समस्याओं की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम केवल उसी से चर्चा करें, हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं और यही कारण है कि लोगों के पास अपनी समस्याओं को बताते फिरते हैं। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूंडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूंडोल में न था। मेरे मित्रों, पहले तो प्रचंड आंधी चली कि पहाड़ थरथरा गए और चट्टाने हिल गई। ओह, क्या उसे आंधी तूफान अच्छा लगा? उसके पांव तले पहाड़ हिल गया, वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह ऐसा ही मनुष्य था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। मेरे मित्रों, भूकंप के बाद आग उठी और अंततः वह भी तो कार्मेल पर्वत पर स्वर्ग की आग गिरवाने वाला पुरुष था। उसे यही अच्छा लगा। एक क्षण रुके, परमेश्वर न तो आंधी में था, न भूकंप में था और न ही आग में था। आग के बाद एक शांत वाणी सुनाई दी। यदि एलिया को वहां कोई बात अरुचिकर लगी तो वह वही शांत वाणी थी। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि एलिया की वाणी ऐसी नहीं थी, परंतु उसे सीखना था कि परमेश्वर शांत रूप से काम करता है। परमेश्वर को निश्चलता में काम करता हुआ देख बड़ा अद्भुत प्रतीत होता है। वह एलिया को एक महान सबक सिखाना चाहता था। कर्मेल पर्वत की चोटी पर आग गिरने से युद्ध विजय नहीं हुई थी। परमेश्वर अपने चमत्कार व अद्भुत और आडंबर रहित रूप से काम करता है। परमेश्वर के काम निश्चल होते हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु छोटी छोटी बातों को काम में लेता है। किसी ने कहा है, बड़े बड़े द्वार छोटे छोटे चूल पर खुलते हैं। परमेश्वर विशाल द्वार खोलने के लिए छोटी छोटी वस्तुओं को काम में लेता है। एलिया को भी यही बात सीखना था। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। मेरे मित्रों, हम इससे अनेक एलिया के स्वरूप हैं। कभी कभी हम अपने परिवारों और अपने समुदाय में अविश्वासियों के मध्य होते हैं और सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर अकेले ही हैं जो मसीह के लिए खड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 15 से 17 पद में पढ़ते हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए, हजाएल का और इसराइल का राजा होने के लिए, निमशी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलिसा का अभिषेक कर, और हजाएल की तलवार में से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई एहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एलिया को कह रहा है, उत्तरी राज्य में लौट जा, वहां तेरे लिए मेरे पास कुछ काम है। उसे आराम का राजा होने के लिए, हजाएल और इसराइल का राजा होने के लिए एहू का अभिषेक करना है। परमेश्वर ने उसे अपने उत्तराधिकारी एलिशा का अभिषेक करने को भी कहा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, तो भी मैं 7,000 इसराइलों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल देवता के आगे घुटने टेके हैं और ना मुंह से उसे चुमा है। मेरे मित्रों, अंत में परमेश्वर ने एलिया को कहा कि इसराइल में 7,000 मनुष्य अभी भी हैं जिन्होंने बाल के देवता के आगे घुटने नहीं टेके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास सदैव कुछ बचे हुए निष्ठावान मनुष्य होते हैं। एलिया के युग में भी उसके पास कुछ लोग अपने थे और आज भी उसके पास एक मनुष्य है। मैं इन बच्चे हुओं के बारे में निर्दयता के शब्द काम में ले चुका हूं, परंतु वे परमेश्वर के लिए खड़े थे। उन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके थे। वे एलिया की नाई प्रत्यक्ष नहीं थे, वे निर्वचन थे, अर्थात छिपे हुए थे, परंतु यहोवा के लिए वे विश्वास योग्य थे। हम आगे देखते हैं एलिशा का बुलाया जाना। परमेश्वर एलिया को घर बुलाने की तैयारी में था, अतः वह एलिशा को उसका स्थान लेने के लिए तैयार करता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेरे मित्रों, एलिशा एलिया का शिष्य बन जाता है। उसे एलिया की सेवा का उत्तराधिकारी संभालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और अध्याय 20 आरंभ होता है। इसका विषय है इसराइल पर आराम का आक्रमण। मित्रों, स्मरण रखें कि यह घटना उस समय की है जब इसराइल राष्ट्र का विभाजन हो चुका था। उत्तरी क्षेत्र में 10 गोत्र जो इसराइल कहलाते थे, राजा और प्रजा के निरंतर पाप करने के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। परमेश्वर उनके वैरियों को उन पर आक्रमण करने की अनुमति देता है, तथापि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उन्हें मन फिराव तथा परमेश्वर के पास आ जाने का अवसर भी प्रदान करता है। मित्रों, इस अध्याय में परमेश्वर इसराइल को बचा लेता है जबकि वे आराम की महान सेना की तुलना में बहुत थोड़े और कम थे। हम देखते हैं अहाब का प्रथम आरामी अभियान और विजय। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 1 पद में लिखा है, और आराम के राजा बेन-हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। मित्रों ध्यान दीजिए, अब तक तो परमेश्वर ने बाहर से बैरी को आने नहीं दिया था, परंतु अब वह उन्हें अनुमति देता है। लिखा है कि परमेश्वर ने आहाब से विजय की प्रतिज्ञा की। हम पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तब एक नबी ने इसराइल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है कि यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा, इसे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। मेरे मित्रों, इस स्थिति में विजय की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आहाब की निष्ठा के कारण नहीं की थी, परंतु इसलिए कि वह अपनी प्रजा से प्रेम रखता था। परमेश्वर ने आहाब को मन परिवर्तन का अवसर दिया। आज हम अवसर खो देने और प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर अवसरों को एक ही दस्तक के पर्याप्त चर्चा करते हैं, परंतु मेरे विचार में अवसर द्वार पर खड़े होकर दस्तक देते ही रहते हैं। आहाब को परमेश्वर ने अरामियों पर विजय की प्रतिज्ञा दी। मित्रों, आज आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं, क्या आप उस दस्तक को सुन पाते हैं? पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, और वे अपने अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और अरामी भागे, और इसराइल ने उनका पीछा किया और अराम का राजा बेन-हदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भाग कर बच गया। तब इसराइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। मेरे मित्रों, आहाब का दूसरा आरामी अभियान बेन-हदद को जीवन दान के लिए आहाब को झिड़की। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 22 पद में, तब उस नबी ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर आहाब से कह रहा था, इस बार तो मैंने तुझे विजय दिलाई है, परंतु सावधान रहना कि बाल पूजा में ना लौटे। मैं प्रकट कर चुका हूँ कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, एकमात्र जीव परमेश्वर। आराम का राजा नए वर्ष के लगते ही फिर आक्रमण करेगा। युद्ध का अंत नहीं हुआ। बेन-हदद इसराइल को पराजित करने के लिए नई शक्ति के साथ प्रयास करेगा। यह बड़ा ही सजीव चित्रण है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 और 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और इसराइली भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई, तब वे उनका सामना करने को गए और इसराइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर के उसी जन ने इसराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है, इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने एक बार फिर आहाब को अरामी सेना पर विजयी बनाया, परंतु आहाब ने बेन-हदद को घात न करके बड़ी चूक की। पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 34 पद में लिखा है, तब बेन-हदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब उसने बेन-हदद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आहाब को आदेश था कि वह वैरी का सर्वनाश करे, परंतु उसने आज्ञा नहीं मानी। पाप से समझौता नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर इसकी अनुमति कभी नहीं देता, परंतु आहाब ने ठीक वही किया जिसकी मनाही थी। हम पहले राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 42 पद में पढ़ते हैं, तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था, तुझे उसके प्राण की संति अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। मेरे प्रिय मित्रों, आज अपराधियों से सहानुभूति दिखाने वालों की समस्या यह है कि उनमें स्वयं अपराधी विवेक है। मेरे प्रियो, वे स्वयं दोषी विवेक से ग्रस्त हैं। वे जानते हैं कि वे पापी हैं। या ऐसा है कि किसी को दोषी ठहराना उनके अपने ही ऊपर उंगली उठाना है। एक पापी किसी पापी का न्याय कैसे कर सकता है? यह बहुत ही कठिन काम है। आहाब की मनोदशा भी ऐसी ही थी, इसी कारण उसने बेनहदत को नहीं मारा। मेरे प्रिय मित्रों, हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है और उसे हम नहीं करते हैं। कई बार मुझे और आपको अवसर मिलता है कि हम उसके पास फिर जाएं, लेकिन नहीं फिरते हैं और इसी कारण से हमें सजा मिलती है, लेकिन हम तब परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। कितनी दुखद बात है। आज हम आहाब के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसका परिणाम उसे अपने जीवन के द्वारा देना पड़ा। क्या आज आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वह आपके जीवन को क्षमा करेंगे, आपको ग्रहण करेंगे और अपनी आशीषों से भर देंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में अमल करेंगे और प्रभु की शांति व आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जय का सृजन हा, पालन हा, तारण हा। दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला,
दिनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला,
जय जन रंजन जय दुख भंजन, नर्तन धार लियो।